नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। खेल जगत की तमाम खबरों के साथ मैं जया भारती और श्रोताओं, इन खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ राहुल बनर्जी। राहुल जी, आपका भी स्वागत है।
धन्यवाद।
इन तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फिडे महिला शतरंज विश्व कप के फाइनल में दिव्या देशमुख और कोनेरू हैम्प्री आमने सामने। मैनचेस्टर में भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल जारी। एशियाई क्रिकेट परिषद ने एशिया कप के तारीखों की घोषणा की और बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में भारतीय शटलर तन्वी शर्मा और विन्नाला कलागोटला के अभियान का शानदार अंत। जॉर्जिया में फिडे महिला शतरंज विश्व कप का फाइनल मुकाबला आज भारत की कोनेरू हैम्प्री और दिव्या देशमुख के बीच हो रहा है। इस मुकाबले में जीतने वाली खिलाड़ी का सामना अगले वर्ष विश्व चैंपियनशिप खिताब के लिए चीन की जू वेंजून से होगा। कोनेरू हैम्प्री और दिव्या देशमुख दोनों ने अपने चीनी प्रतिद्वंदियों को हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। इस वैश्विक स्तर टूर्नामेंट में भारत के लिए विजेता और उपविजेता दोनों स्थान सुरक्षित हैं। महिला शतरंज में यह देश के लिए गौरव का क्षण है। चीन की दीवार को तोड़ करके जिस तरह से भारत की दोनों बेटियों ने जॉर्जिया में इतिहास रच दिया है, हम कह सकते हैं कि बटूमी में इतिहास लिखा जा चुका है। बस देखना बाकी है कि विश्व कप का खिताब पर देश की किस बेटी का नाम होता है।
अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये दोनों खिलाड़ी जो आपस कल मिलेंगे
जी,
या मिल रहे आज रात को, उम्र में देखें तो एक कोनेरू हैम्प्री काफी सीनियर है,
38 साल की, और
उनके सामने जो है 19 साल की है। तो ये दो तरफ है भारतीय चेस के, ये शतरंज के महिलाओं के साइड की तरफ से
बिल्कुल
किस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारी शतरंज की लड़कों के साइड, मेंस के साइड में तो हमको पता ही है कि जिस तरह से हमने, हमारे खिलाड़ी ने रिसेंटली परफॉर्म किया है, और अभी इस महिला की तरफ से भी उतनी ही गति से आगे बढ़ने का ये जो खबर है, और ये जो देख रहे हैं हम इतना वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे हैं, और जैसे आपने कहा कि दोनों पहला और दूसरा शतक दोनों ही बोथ
दोनों मतलब पोजीशन हमारे नाम
भारत के नाम
भी
लिखा हुआ है,
विजेता भी है। एक तो है 38 साल की हैम्प्री जिनके पास अपने अनुभव हैं, और दूसरी ओर जो 19 साल की दिव्या है उन्होंने भी चौंकाने वाले मुकाबले खेले। तो अब ये देखना रोमांचक होगा कि कौन सी बेटी खिताब लेकर के आती है। मैनचेस्टर में भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत 225 रन से पीछे है। चौथे दिन के खेल में चाय काल तक भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में दो विकेट पर 86 रन बना लिए हैं। मेजबान इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 669 रन बनाकर श्रृंखला में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, और टेस्ट श्रृंखला में भारत फिलहाल 1-2 से पीछे है। इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक रिपोर्ट।
इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने ओल्ड ट्रैफर्ड में एक शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया और टेस्ट इतिहास में सर गारफील्ड सोबर्स और जैक कैलिस के बाद करियर में 7000 रन और 200 विकेट लेने का कीर्तिमान हासिल किया। वे ऐसा करने वाले तीसरे ऑलराउंडर बन गए। इंग्लैंड के कप्तान ने अपने खास अंदाज में ये उपलब्धि हासिल की। उन्होंने चौथे दिन की शुरुआत ही एक छक्के के साथ की और फिर 141 रनों की शानदार पारी खेली। इस पारी ने टेस्ट में शतक लगाने का उनका 2 साल का इंतजार भी खत्म किया। इस पारी में बेन स्टोक्स, जो रूट के शतकों और सलामी बल्ले बाज बेन डगेट और जैक क्रॉली के अर्धशतकों ने अहम भूमिका निभाई, जिसकी बदौलत मेजबान इंग्लैंड ने 669 रनों का स्कोर खड़ा किया। यह टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड का 5वां सबसे बड़ा स्कोर है। ओल्ड ट्रैफर्ड में यह इंग्लैंड का अब तक का सर्वोच्च पारी स्कोर भी था। इससे पहले टेस्ट का तीसरा दिन इंग्लैंड के लिए कई उपलब्धियों से भरा रहा। जो रूट सर्वकालिक टेस्ट रन बनाने वालों की सूची में राहुल द्रविड़, जैक कैलिस और रिकी पॉन्टिंग को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच गए। 13,409 रनों के साथ वह अब केवल सचिन तेंदुलकर के 15,921 रनों के विशाल रिकॉर्ड से पीछे हैं। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
कुल मिलाकर देखा जाए तो इंग्लैंड टेस्ट टीम के लिए तीसरा दिन और चौथा दिन काफी महत्वपूर्ण रहा, कई उपलब्धियां उन्होंने अपने नाम की। लेकिन इस बीच भारत की मुश्किलें बढ़ गई और अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि भारत अभी बैकफुट में दिख रहा है भारत की टीम। तो ऐसे में भारत की क्या रणनीति होगी, क्या वह मैच ड्रॉ कराने की कोशिश करेगा या फिर पलटवार करेगा?
अब देखिए, हम लोग अभी ये जो मैच पहुंचा है चौथे दिन का आखिर के दो घंटे हैं और कल पांचवा दिन है। अब पिच लगातार काफी घिसता जा रहा है
जी।
तो ऑलरेडी हमने देखा इस पिच में काफी जान है और बेन स्टोक्स ने करके देखा, 6 विकेट उन्होंने पहले पारी में निकाली, तो जान है विकेट में और घटता जाएगा। अब उनके स्पिनर जो है वो भी आएंगे वापस, लियम लॉसन पहले ऑलरेडी फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने दिखा चुका है कि हमारे 2-3 इम्पोर्टेंट बल्लेबाजों को उन्होंने निकाला
जी।
तो मुश्किल होगा बचना। एट द सेम टाइम अभी कप्तान और राहुल द्रविड़ जो इस टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं वो अभी क्रीज में हैं, किसी तरह आज अगर कल तक निकाल दें बिना और विकेट खोए, फिर आज शाम को बैठ के प्लान कर सकेंगे कि कैसे हम आगे खींच सकते हैं, क्योंकि इस मैच को जीतना तो मुश्किल है। किसी तरह अगर ड्रॉ कर पाए इस गेम को
जी
और सीरीज को आखिर वाले मैच में ले जाएं, टू लेवल इट, टू ड्रॉ द सीरीज, वो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा एक मेरे ख्याल से एक अचीवमेंट होगा अगर यहां से ड्रॉ करके निकले, क्योंकि अभी सारे जो है ऑल द कार्ड्स आर इंग्लैंड के हाथ में है। जिस तरह उन्होंने डोमिनेट किया इस टेस्ट मैच को, हर स्फीयर में अगर आप बॉलिंग में देखें बैटिंग में देखें, तो ये एक वक्त है भारत के, हमारे टीम को अपने कैरेक्टर को दिखाना कि नए कप्तान किस तरह अपने टीम को मोटिवेट कर सकते हैं। खुद पहले टेस्ट मैच के बाद उनकी खास कोई परफॉर्मेंस नहीं रही है शुभमन गिल की, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि कर दिखाएं कि हाँ मेरे में काबिलियत है, आई कैन कैरी द टीम ऑल्सो। जिस तरह बेन स्टोक्स इंग्लैंड की टीम को अपने कंधों पर उठा के चल रहे हैं
जी,
शुभमन गिल के पास एक मौका है कि भारत को भी दिखाए कि मेरे में उतनी ही कैपेबिलिटी है और मैं भी मैच कर सकता हूँ मेरे ऑपोजिट नंबर को।
तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो भारत अभी इस मैच को ड्रॉ करने की कोशिश करेगा
जी।
इस बीच एशिया कप के तारीखों की घोषणा हो गई है और टूर्नामेंट का आयोजन 9 से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात यूएई में होगा। एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। टूर्नामेंट के मैचों का आयोजन दुबई, अबू धाबी और शारजाह में होने की उम्मीद है। एशिया कप 2025 T20 के फॉर्मेट में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई, अफगानिस्तान, श्रीलंका, हांगकांग और ओमान हिस्सा ले रहे हैं। भारत एशिया कप का मौजूदा विजेता है। भारतीय टीम ने वर्ष 2023 में 50 ओवर फॉर्मेट में खेले गए एशिया कप के फाइनल में कोलंबो में श्रीलंका को हराकर खिताब जीता था। लेकिन अगर इस बार की एशिया कप की बात करें तो उसके शुरुआती कार्यक्रम के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप चरण के मैच 14 सितंबर को दुबई के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा। तो ऐसे तो लोग क्रिकेट देखते ही हैं, इंडिया में क्रिकेट का कितना क्रेज है वो हम सब जानते हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान का जब मैच होता है तो वे काफी रोमांचक होता है, कितना रोमांचक होने की उम्मीद है?
अब इसमें एक दिक्कत ये और भी है कि हाल में जो हुआ, जो क्रॉस बॉर्डर जो
जी वो तनाव
निकला है, जो तनाव अभी भी चला हुआ है, तो इसको किस तरह टैकल करेगी भारतीय सरकार और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को उनकी तरफ से क्या एडवाइस दिया जाएगा कि खेले या ना खेले पाकिस्तान के साथ, इस वक्त अगर तनाव चल ही रहा है और इश्यूज अभी भी बनी हुई है, सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। सबकी तरफ सबके उम्मीद तो यही है कि खेल को अपनी जगह में रखें, लेकिन अभी हालात इतना ऐसे जगह में पहुंच चुका है कि मेरे ख्याल से सरकार की तरफ से ही आखिर नतीजा होगा, इस पर डिसीजन होगा
और स्थिति जो भी हो खेल को खेल की तरफ से ही देखेंगे दर्शक और उसी की तरफ से एंजॉय करेंगे।
स्पोर्ट्स लवर की तरफ से यही चाहते हैं कि मैच बने रहे और ये किस तरह ये सॉल्व होगा ये अभी देखने, मेरे ख्याल से अभी वक्त है, अभी काफी टाइम है। अब इसके बीच में आज के और जब मैच के दिन के अब काफी टाइम है, तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर मैच हुआ, अब आपकी बात पे आते हैं, तो ऑलवेज पाकिस्तान इंडिया का मैच किसी भी लेवल पे हो इज ऑलवेज वेरी स्पेशल। जैसे एक टाइम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस हुआ करते थे, आज भारत और पाकिस्तान के मैच उसी स्तर के माने जाते हैं, गिने जाते हैं, और मेरे ख्याल से हर खिलाड़ी दोनों तरफ अपने आप को प्रूव करना चाहता है कि मैं सबसे जो हमारे जो अहम या सबसे बड़े ओपोनेंट है उनके खिलाफ मैं शाइन करूं।
बिल्कुल, और एशिया में जिस तरह से क्रिकेट का विस्तार हो रहा है, नए क्रिकेट प्लेइंग नेशन सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में एशिया कप की जंग और कितनी रोमांचक होगी? कौन सी टीम आपको इस बार ज्यादा दावेदार पेश करते हुए नजर आएगी?
देखिए, मैं तो बहुत सालों से अफगानिस्तान की टीम को सपोर्ट करता हूँ। जिस बैकग्राउंड से वो उठ के आए हैं, वो टीम इतनी छोटी सी देश, जो हम सबको मालूम है कितने साल उनके दिक्कत हुए हैं, तो ऐसे टीम को वर्ल्ड लेवल तक पहुंचना, वर्ल्ड कप में लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देना, तो बहुत अपने ही तरफ से एक रोमांचक कहानी है। और हर स्पोर्ट्स लवर को रोमांच से ही सबसे ज़्यादा प्यार होता है, और अफगानिस्तान की टीम को तो मैं तो बहुत चाहता हूँ कि वो शाइन करें, खास करके पाकिस्तान, अगर उनके पाकिस्तान को हराएं और फिर भारत के साथ अगर फाइनल हुआ तो सबसे बढ़िया यही होगा।
जी, कह सकते हैं कि छोटे नेशंस भी हैं जो क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और इंडोनेशिया के सोलो में भारतीय शटलर तन्वी शर्मा और वेन्नाला कलागोटला ने आज बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप के सिंगल्स के मुकाबलों में कांस्य पदक जीतकर अपने शानदार अभियान का अंत किया। इस प्रतियोगिता में यह पहली बार है जब भारत की दो खिलाड़ियों ने सिंगल्स में पदक जीते। वेन्नाला ने चीन की लियू सी या के सामने कड़ी चुनौती पेश की, लेकिन आखिरी में उन्हें 37 मिनट तक चले मैच में 15-21 और 18-21 से हार का सामना करना पड़ा। एक अन्य मैच में दूसरी वरीयता प्राप्त तन्वी शर्मा को चीन की आठवीं वरीयता प्राप्त येनी किंग से 35 मिनट के मैच में 13-21, 14-21 से हार का सामना करना पड़ा। भले ही तन्वी को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उनके लिए यह एक और प्रभावशाली प्रदर्शन था। तन्वी पिछले महीने अमेरिका ओपन के टूर्नामेंट में भी विजेता रही हैं। अब कई हद तक तन्वी में पीवी सिंधु की झलक देखी जा रही है, तो तन्वी के करियर को लेकर क्या आप क्या कहेंगे?
पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि हमारे सीनियर खिलाड़ी थोड़ा सा, एक टाइम जो प्रॉमिस था कि हम कप की वर्ल्ड टॉप 5 या टॉप 10 में डोमिनेट कर पाएंगे, वो कुछ सालों से नहीं दिख रहा है। तो अभी पूरी नज़रें अब जूनियर प्लेयर्स के ऊपर है, और जैसे आपने कहा, तन्वी की जो करियर है, तो पीवी सिंधु जैसे महान खिलाड़ी के कुछ थोड़ा सा उनके ट्रैक पे चल रही है। अगर ये आगे चलती रही और ऐसे ही बनते रहा उनका करियर, तो भारत के लिए बहुत अच्छा ही है। एट द सेम टाइम और भी जूनियर टैलेंट है जो उभर रहा है बैडमिंटन में।
जी, कह सकते हैं कि बैडमिंटन में लगातार नए सितारे उभरते हुए आ रहे हैं।
हर खेल में ऐसा होता है कि एक ट्रांजिशन होता है, सीनियर जब निकलने, जब उनका जो एज थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो जूनियर लोग आते हैं उनके जगह में, तो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है कि डाउन हो जाता है स्पोर्ट। लेकिन मुझे जो लगता है कि भारत के जो आगे का जो होप्स है यंग स्टार्स पे, वो काफी ब्राइट है।
जी, इस बीच एशियन गेम्स के चैंपियन सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को चांगझाओ में चाइना ओपन 2025 के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही इस टूर्नामेंट से भारत का अभियान समाप्त हो गया। आज खेले गए मेंस डबल्स मुकाबले में भारतीय जोड़ी को दुनिया के नंबर 2 मलेशियाई जोड़ी सो उई इक और ओरान चिया के खिलाफ 13-21, 17-21 से हार मिली। यह मुकाबला 42 मिनट तक चला था, जहां पहला गेम भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने आसानी से गवा दिया, लेकिन दूसरे गेम में उन्होंने संघर्ष किया, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो देखा जाए, चिराग और सात्विक की जोड़ी को इससे पहले भी करीब 5 मौके मिल चुके हैं फाइनल और क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में, लेकिन अभी भी वो जो फाइनल का खिताब है वो सूखा पड़ा है।
ये कह रहा हूँ, जो हमारी उम्मीदें थी सीनियर प्लेयर्स पे काफी साल से, अब ऐसा नहीं है कि वो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेज उन्होंने दी हैं, लेकिन कहीं जाके लास्ट के, जैसे आपने कहा, लास्ट के स्तर में या तो अटक हो जाता है या हिचक जाते हैं या हार जाते हैं। तो ये अब उम्मीद थोड़ी थोड़ी हम जो देख रहे हैं हटनी शुरू हुई है सीनियर प्लेयर्स से, और जूनियर्स की तरफ जा रही है, और जूनियर्स में जिस तरह से टैलेंट उभर रहा है, मेरे ख्याल से कुछ ही सालों में हम लोग के जो अभी सीनियर गुजर रहे हैं उनके जगह में हम लोग को देखने को मिलेगा।
भारत की हाफ मैराथन में बड़ी उपस्थिति आज विश्वविद्यालय खेलों में निराशाजनक रही, क्योंकि पुरुष और महिला वर्ग में 10 धावकों में से कोई भी पोडियम पर जगह नहीं बना पाया। हालांकि कुछ धावकों ने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किए, लेकिन वे भी पदक जीतने से चूक गए। इस बीच महिला कंपाउंड के रोमांचक फाइनल में भारतीय तीरंदाज परनीत कौर दक्षिण कोरिया की मुन यून के खिलाफ दबाव बनाने में असफल रही और उन्हें रजत पदक से संतुष्ट करना पड़ा। श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। राहुल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और खेल खबरों पर हमसे बात की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
थैंक यू।
और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।